اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم کا آج فائنل لیسن ہے۔ اہدنا اور ہدایت کے درجے ہم نے اچھی طرح سمجھ لیے تھے اور اچھی طرح سوچ بھی لیا تھا، اس کو پروسیس بھی کر لیا تھا۔ ہم نے اپنے لیے اپنی ہدایت کا درجہ بھی معین کر لیا تھا کہ اپنی عام زندگی میں اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت کس قدر ہماری ترجیح ہے، ہم کتنی پرائیورٹی دیتے ہیں اس خالق کی ہدایت کو جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے۔ ہم مخلوق ہوتے ہوئے کہیں ایسا تو نہیں سوچتے کہ ہم خالق سے زیادہ جانتے ہیں اور اس کی بھیجی ہوئی ہدایت کو پسے پشت ڈال کر اپنی مرضی چلانا اور اپنی نفس کی پیروی کرنا، ظاہر ہے ہمیں ہدایت عامہ کے درجے پہ لے آتا ہے جہاں ہم سانس لے رہے ہیں، اپنے خالق کے ڈیزائن کے مطابق کھا پی رہے ہیں، شاید دکھ درد سے، فزیکل تکلیف سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں اور اپنی نفس کی خواہشات کو پوری کرنے کی جد و جہد میں اور محنت میں اور دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ ہر اس ہدایت کو پسے پشت ڈال کر جو خالق نے ہمارے انسان ہونے کے ناطے ہمیں عطا کی ہے۔ تو جب ہم اہدنا کہتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ٹرم بھیجی ہے، جو فریز بھیجا ہے، وہ ہے الصراط المستقیم۔ اور کچھ تو یہ حصہ، یعنی اس کی ڈیٹیل میں اہدنا الصراط المستقیم جب پورا پڑھا رہی تھی تو اس میں نے کور کیا ہے، لیکن آج کا یہ سیشن اسی ڈیٹیل کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہے کہ ہم کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہر نماز میں کتنی کتنی بار، ہر رکعت میں ایک دفعہ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا اس جگہ پر اور اس مقام پر پہنچ کے ہم یہ سوچتے ہیں کہ صراط مستقیم کہتے کس چیز کو ہیں، آخر یہ نام کس چیز کا ہے؟ اور صراط کی پانچ خصوصیات جو ہمیں یہیں پہ سمجھ لینی چاہیے وہ یہ ہیں کہ اس میں کوئی بریک نہیں ہے، یعنی صراط کوئی ایسا راستہ نہیں ہے جو چلتے 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 ایک دم سے ایک ٹوٹی ہوئی پگڈنڈی بن جائے گا یا کوئی تنگ گلی بن جائے گا۔ صراط ایک سیدھا اور کشادہ راستہ ہے، اور میں نے مثال آپ کو موٹر وے کی دی تھی۔ دوسری اس کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی ڈائیورژن نہیں ہے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، جو مستقیم سے زیادہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، لیکن صراط کی بھی جو کوالٹی ہے وہ یہ ہے کہ اس راستے میں کوئی اور ڈائیورژن نہیں ہے۔ اس کو چند پگڈنڈیاں یا چھوٹے چھوٹے راستے کراس تو کر رہے ہیں، لیکن صراط کو پہچاننا بہت آسان ہے، یہی اس کی تیسری کوالٹی ہے۔ اس میں کوئی بریک نہیں ہے، اس میں کوئی ڈائیورژن نہیں ہے، اس میں کوئی موڑ نہیں ہے، اس میں کوئی کارنرز نہیں ہے، یہ ایک سیدھا اور کشادہ راستہ ہے اور یہ ایک آسانی سے پہچانا جانے والا راستہ ہے۔ یہ صراط کی کوالٹیز ہیں جو اس لفظ سوراتا میں موجود ہیں، اور یہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کیونکہ ہم خود اپنے منہ سے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کے بعد مستقیم کی ڈیٹیل میں جانا بہت ضروری ہے کہ خط مستقیم کیا ہے، اور یہ بھی میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ دا شارٹیسٹ ڈسٹینس بٹوین ٹو پوائنٹس دیٹ جوائن ٹو پوائنٹس اے اینڈ بی از اے اسٹریٹ لائن۔ اور یہ اسٹریٹ لائن کا کانسیپٹ جو ہے یہ عربوں سے ہی آیا تھا، اور عربوں نے اس کو اس وقت خط مستقیم کے نام سے، جیومیٹری کی یہ ٹرم انہوں نے بتائی تھی دنیا کو، جہاں سے یہ قانون جیومیٹری کا بنا تھا कि दो नुक्तों को मिलाने के लिए, एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते तक पहुंचने के लिए सबसे आसान रास्ता जो है और सबसे छोटा फासला जो है वो खत्ते मुस्तकीम का है, जो एक सीधी लाइन है जो इन दोनों नुक्तों को मिलाती है। फिर मैंने आपको हदीस सुनाई थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ खड़े थे वहाँ से उन्होंने एक सीधी लाइन खींची और कहा कि समझो ये सिराते मुस्तकीम है, इसके इधर उधर दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, खिड़कियों में से शैतान तुम्हें बुला रहा है, लेकिन ये सिराते मुस्तकीम है जिसको पहचानना बहुत आसान है और इसके उस सिरे पे एक मुनादी तुम्हें बुला रहा है और वो मुनादी कौन है ये भी मैंने आपको बताया था, वो मुनादी कुरान है। तो अब सिराते मुस्तकीम तो हमारे लिए बिल्कुल क्लियर हो गया कि किस किस्म का रास्ता है, उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, उसको कैसे पहचानना है और उसकी यानी जो उसकी वो एक इनहेरेंट क्वालिटी जो है मुस्तकीम सिरात तो वो है, सड़क है और कुशादा है और आसान है, पहचाना जाता है। साथ में अगला लफ्ज़ जो है दरअसल वो एक्सप्लेन कर रहा है कि इस सड़क की वो कौन सी खसूसियात हैं जो हमने जहन में रखनी है जब हम इस पे चढ़ते हैं, जब हम इस पे चलने का इरादा करते हैं। ये सीधा रास्ता है, स्ट्रेट, इसमें कोई दाव पेच नहीं है, इसमें कोई छुपी हुई बातें नहीं हैं, इसमें कोई कटिंग कॉर्नर्स नहीं हैं, सबसे बड़ी बात जो है इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। याद रखें एक बात, मुस्तकीम का लफ्ज़ मैं आपको समझा रही हूँ जो कौम से आया है, कौम भी मैंने आपको पढ़ाया था। दूसरी बात मुस्तकीम की ये है, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है और ये जहन में आपने रखनी है, ये कौम का लफ्ज़ सुन के और मुस्तकीम का लफ्ज़ सुन के आपके जहन में उर्दू का कोई लफ्ज़ आता है? मुस्तकीम ख़ास तौर पर ये लफ्ज़ सुन के इस्तिकामत आता है ना जहन में, इस्तिकामत का क्या मतलब है? इस्तिकामत का मतलब है स्टेडफास्टनेस, इंग्लिश में इसको स्टेडफास्टनेस कहते हैं। उर्दू में इसके लिए मुसीबत यह है कि कोई ऐसा मजबूत लफ्ज नहीं है जिसके जरिए, एक लफ्ज के जरिए मैं आपको ये पूरा समझा दूं, लेकिन स्टेडफास्टनेस का मतलब है कि हौसले से और दिलजमई से और खंदा पेशानी से और दिल लगा के एक काम मुसलसल करते जाना, यानी कि उस काम में कोई ब्रेक ना लाना, बिल्कुल जो सिरात की क्वालिटीज़ हैं, ब्रेक ना लाना, कहीं मुड़ ना जाना, किसी दरवाजे खिड़की की तरफ मुतवज्जे ना होना, एक मुसलसल फोकस के साथ, इन्हिमाक के साथ और एक ही जैसी हिम्मत के साथ और एक ही जैसी कोशिश के साथ एक काम मुकम्मल दिल जमही से करते रहना और मुसलसल करते रहना, इसको इस्तिकामत कहते हैं। और जब हम सिरात मुस्तकीम कहते हैं, एहदिना सिरात मुस्तकीम, तो दरअसल हम ना सिर्फ तौफीक मांग रहे होते हैं उस काम करने की, बल्कि हम उस काम के करने में इस्तिकामत और मुस्तकिल मिजाजी मांग रहे होते हैं। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो रमज़ान में ऐसे मोमिन बन जाते हैं, हम खुद भी वही हैं जिनको पहचानना मुश्किल होता है, हैं जी? कुरान मजीद तो ढूंढ ढूंढ के और रोज़ाना खोल खोल के उसके वर्के बोसीदा होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन एक महीने के लिए। फिर कितने हम में से ऐसे लोग हैं, और वो मैं खुद भी हूँ, जिनके कुरान में सूरह यासीन और सूरह मुल्क के जो हिस्से हैं वो बोसीदा हैं। कुरान को देखें तो आपको पता चल जाएगा, सूरह कहफ वाला हिस्सा जो है हल्का सा उसका रंग बाकी सफ़ों से डिफरेंट होगा क्योंकि वो हर जुमे को पढ़ा जाता है। तो कुरान को रोज़ाना पढ़ना और सीखना तो एक बात है, लेकिन कुरान को एक वजीफे की तरह पढ़ना, ये वो शॉर्टकट है जिसको, मैं इसकी बुराई नहीं कर रही, ये सब काम मैं खुद भी करती हूँ, लेकिन ये कुरान को सीखना नहीं है। हाँ, कुरान की अफादियत जाहिर है, ये तो एक सरचश्मा है अल्लाह की रहमत का, इसकी अफादियत पहुंचेगी, जरूर पहुंचेगी, लेकिन क्या कुरान हर काम में और हर अमल में हमारी तरजीह है? वो तभी होगा जब हम कुरान को सीख रहे होंगे, और ना सिर्फ सीख रहे होंगे, ये हमारे अमल में नजर आ रहा होगा और लोग हमें देखकर सीख रहे होंगे हमें देखकर, हमारी बातों से नहीं, ये मैं सिर्फ बातें कर रही हूँ, हमारे अमल से लोग कुरान को पहचानेंगे। ये है अहदिना सिरातल मुस्तकीम। अच्छा जी, एक आखिरी बात जो बहुत कम लोगों को पता होती है और मुझे भी इस दौरे की तैयारी में पता चली है। मज़े की बात यह है कि हर दफ़ा जब आप कुरान पढ़ाते हैं तो एक नई रोशनी में वो आपके सामने आता है। कभी भी आप बोर नहीं होते, कभी आपको रेपिटेशन का एहसास नहीं होता, कभी आपको ये नहीं लगता कि ये तो मुझे पहले से आता है। हर दफ़ा एक नई रोशनी में और एक नए जाविये के साथ और एक नए नुक्ता नज़र के साथ आप इस अल्लाह की जो बेपनाह रहमतों से भरी हुई किताब है आप इसको देखते हैं और इसको पढ़ के आप एक नया सबक हासिल करते हैं। तो इस दफ़ा जब मैं दौरे की तैयारी कर रही थी तो मुस्तकीम का एक बड़ा अनयूजुअल मतलब मेरे सामने आया। एक इंडिया में कोई बच्ची है, उसका छोटा सा यूट्यूब पे क्लिप था, उसने एक बात की थी, 2 मिनट का क्लिप था, लेकिन उसने मुझे बहुत सोचने पे मजबूर किया। उसने कहा मुस्तकीम चूंकि क़याम से निकला है तो इसका मतलब है सीधा, और ये वो सीधा नहीं है जिसको हम सीधा समझते हैं, यानी कि हमारी नज़रों के सामने एक सीधा रास्ता चल रहा है, ये दरअसल एक अपहिल रास्ता है। यानी अपहिल का मतलब ये जैसे आप एक चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और उसके मुंह से सुन के वो बच्ची, अल्लाह उसे जज़ाए खैर दे, उसका नाम भी भूल गया है, लेकिन ये सुन के मैं बहुत सोचने पर मजबूर हुई और फिर मैंने खुद रिसर्च की, ढूंढा मैंने, और ये बिल्कुल सही बात है। मुस्तकीम के मादे में ये भी शामिल है कि ये नीचाई से ऊंचाई की तरफ जा रहा है। तो ये सीधा रास्ता तो है लेकिन इस पे चढ़ना है, इसमें मेहनत इन्वॉल्व है, इसमें एनर्जी इन्वॉल्व है। ये जैसे अभी मैं चल रही हूँ और आपके लिए मैसेज रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये सीधे फर्श पे मैं चल रही हूँ, ये चढ़ाई पे चढ़ना है। इस्तिकामत इसीलिए मांगी गई है कि जब एक के सामने दूसरा कदम रख के आप ऊपर चढ़ रहे होते हैं तो वो चढ़ाई होती है और वो आपके लिए मुश्किल से मुश्किल होती चली जाती है, इम्तिहान सख्त होता चला जाता है, मेहनत ज़्यादा चाहिए होती है और सांस फूलती है। तो बड़ा ज़बरदस्त ये एक नई बात मुझे पता चली है। और अहदिना सिरातल मुस्तकीम कहते हुए हम अगर अपने जहन में सिरात और मुस्तकीम के मानी लाएं तो ये बात भी साथ लाएं कि ये रास्ता अपहिल है, ये एक हम बुलंदी की तरफ चढ़ रहे हैं ना, अल्लाह की तरफ जा रहे हैं ना, अल्लाह से मिलना है हमें और अल्लाह से सुरखरू होके मिलना है इंशाअल्लाह। तो आसान तो नहीं होगा रास्ता, ऐसा आसान तो नहीं होगा जैसे एक सीधी सड़क होती है, कुछ तो होगा उसमें। तो वो ये है कि ये अपहिल है, ये बुलंदी की तरफ जाता है और उसकी वजह से इस्तिकामत की ज़रूरत होती है, ये आसान रास्ता नहीं है। अच्छा जी, हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। इहदिना सिरातल मुस्तकीम हमने पढ़ लिया और यही वो दुआ है जिसके जवाब दुआ में हम कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अब मुझे ये बताएं कि सिरात मुस्तकीम तो मैंने आपको समझा दिया, अपनी आम चॉइसेस में, अपनी ज़िंदगी में कितनी जगहों पर हमारा इंतखाब सिरात मुस्तकीम होता है, इससे पता चलेगा कि खालिक की मर्ज़ी और खालिक की प्रायोरिटी और खालिक की पसंद जो है वो हमारी किस कदर तरजीह है। एक सिंपल मिसाल मैं आपको देती हूँ, बड़ी ही आसान मिसाल जो हम सब जिससे गुज़रते हैं और आजकल दोबारा गुज़र रहे हैं। शादियाँ करते हैं हम, करते हैं ना, तो शादी के बारे में कुरान में ही जो बातें हैं, जो अहकामात हैं, और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से, अजवाज मुतहरात की ज़िंदगी से, उनके वाक़यात से हमें बहुत सी बातें पता हैं कि शादी का मतलब, मुसलमान जब शादी करता है तो एक मर्द और एक औरत जो हैं वो आपस में निकाह करते हैं, और औरत की अगर पहली शादी हो तो वो वली की मौजूदगी में होती है, कुरान में ही लिखा हुआ है, और 2 गवाह होने चाहिए, उसके बगैर भी नहीं हो सकता, और निकाह खां होता है जो शायद दूल्हा या दुल्हन का अबू भी हो सकता है क्योंकि उसने 2 एक्शंस करने होते हैं, एक होता है ईजाब और दूसरा होता है कबूल। जो निकाह के बारे में हमें पता है ना, तुम्हें कबूल है कबूल है कबूल है, और वो दुल्हन या दूल्हा कहते हैं कि कबूल है कबूल है कबूल है। जब ये अमल दो गवाहों की मौजूदगी में हो जाता है और दुल्हन के वली की मौजूदगी में, तो इनका निकाह हो जाता है। फिर ये मर्द और औरत जो हैं, ये आपस में एक साथ रह सकते हैं और एक घर की बुनियाद रख सकते हैं, और एक रूहानी और जज्बाती और जिस्मानी ताल्लुक इनका कायम हो जाता है, और फिर इनके बच्चे पैदा होते हैं और उससे उम्मत बढ़ती है, और फिर सब हंसी खुशी रहते हैं। कितनी प्यारी बात है ना। अब ज़रा दिल पे हाथ रख के मुझे बताएं, पिछली शादी जो आपने अटेंड की थी, उसका सिराते मुस्तकीम से क्या ताल्लुक था? हाँ, ये सब बातें उसमें होंगी जो मैंने अभी बताई हैं। फिर वो वलीमा की सुन्नत है, वो भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, शुक्र है कि की है। हमें बड़ा अच्छा एक्सक्यूज़ मिल जाता है मज़ीद खुराफात करने का। तो वो वलीमा होता है, खाना खिलाया जाता है, मेहर दिया जाता है, वो सब बातें हैं। उसके अलावा, अब इन इन सब बातों के अलावा, आप ये सब बातें आप एक लिस्ट पर लिखें ना, तो ये 6-7 बातें बनती हैं। अब जो लास्ट शादी आपने अटेंड की थी, उसमें आपने जो कुछ देखा, जितनी किस्मों के खाने थे, जिस तरह के लिबास लोगों ने पहने हुए थे, उसी शादी के लिए सिलवा के पहने थे, जिस तरह के जूते ख्वातीन ने पहने हुए थे, एक शाम पहले खरीदे थे सूटों के साथ मैचिंग, जिस तरह का स्टेज बना हुआ था और जिस तरह वहाँ पे पर्दे का इंतज़ाम था, और जिस तरह की मौसीकी शायद वहाँ बज रही थी, और जिस तरह के नाच गाने वहाँ हो रहे थे या नहीं हो रहे होंगे, या अगर हो रहे थे तो ज़िक्र ज़रूर कीजिएगा, एक लिस्ट बनाएं। अब मुझे बताएं कि जो लिस्ट आपने बनाई है, या जो मैंने भी बनाई है, पिछली शादी जो मैंने अटेंड की थी उसकी भी मैंने एक लिस्ट बनाई है, और 29 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, और उन 29 में से जो 6 पॉइंट सिराते मुस्तकीम वाली शादी के हैं, जो कुरान और सुन्नत से हमें पता चले, उसके अलावा हर चीज़ या खुराफात है और या लगवियात है। अब आप मुझे बताएं कि हमारी जिंदगियों में सिराते मुस्तकीम कहाँ है, हम सिरात मुस्तकीम के कितने करीब हैं या हम इससे कितने दूर हैं, हम सिरात मुस्तकीम को किस हद तक अपनी तरजीह बनाते हैं। और सिरात मुस्तकीम सिर्फ ये 6 पॉइंट्स शादी के नहीं हैं, बाय द वे, सिरात मुस्तकीम तो हम शुरू में मैं आपको बता चुकी हूँ, 4 बातें हैं, तौहीद, रिसालत, इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में खर्च करना, और जहाद फ़ी सबीलिल्लाह, ये 4 पॉइंट्स हैं, ये सिराते मुस्तकीम है। हर फैसला इन 4 बातों को सामने रख कर करते हुए जब हम वो फैसला करेंगे, तो हम सिराते मुस्तकीम पर होने की उम्मीद रख सकते हैं। अब बहुत बड़ी मिसाल मैंने दे दी, बहुत बहुत से लोग सोचने पर मजबूर हो गए, छोटी सी मिसाल मैं आपको देती हूँ। खाना खा के, रात का खाना वो भी, हम में से कोई कहता है, दोस्तों में से जिनमें मैं भी शामिल हूँ, अरे मेरा तो दिल आइसक्रीम खाने को चाह रहा है, और फ्रीज़र में जो आइसक्रीम पड़ी है ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे गाड़ी में बैठ के जाना है, मुझे वो वाली आइसक्रीम खानी है। अब मेरे पेट में मुर्ग मुसल्लम और पता नहीं क्या कुछ पड़ा हुआ है, निहारी और चावल, लेकिन ये शहवत और ये नफ्स जो हमारा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड जो अंदर बैठा हुआ है, वो हमें कह रहा है कि चलो आइसक्रीम खाते हैं, और हम गाड़ी में बैठ के और चंद 100 रुपए का पेट्रोल फूंक के और एक दुकान पे जाते हैं, वल्लाहु आलम वहाँ कितने मर्द होते हैं, कितनी औरतें होती हैं, कैसी रोशनी होती है, और हम वहाँ बैठते हैं, और अक्सर एक नामहरम मर्द आके हमें आइसक्रीम सर्व करता है, और वहाँ हम ना सिर्फ बैठते हैं बल्कि बड़ी ऊंची आवाज़ों में हम बोल भी रहे होते हैं और हंस भी रहे होते हैं। जब आइसक्रीम खाते हैं, वो शुगर रश जब हमें होता है, तो हम कुछ बेहंगम भी बोल जाते हैं, और हम बड़े खुश होते हैं, यार बड़ा इन्जॉय किया हमने, और थोड़ा रोते धोते भी हैं कि वो जो आधा पाउंड वजन कम हुआ था तो अब 2 पाउंड मजीद चढ़ जाएगा सुबह तक, और फिर घर आके सो जाते हैं। अब सिराते मुस्तकीम का आप सोचें, पहली बात तौहीद, अल्लाह ने क्या, अल्लाह ने हमारे खाने के बारे में कुछ कहा है? अल्लाह ने कुरान में कहा है कुलू वशरबू, खाओ और पियो, कितनी खुशी की बात है ना। हमने बिल्कुल ठीक किया, खाया पिया हमने, वाह वाह जी। और उसके साथ ही अल्लाह कहता है वला तुसरिफू, और इसराफ ना करो, ज्यादती ना करो, फजूल खर्ची ना करो, ऐसे जाया ना करो। एक बात। दूसरी बात, हमारे पास जो एक्स्ट्रा उस वक्त 1,000-1,500 रुपए थे जो हमने आइसक्रीम पे फूंके, जिसकी हमारे जिस्म को जरूरत, ना सिर्फ जरूरत नहीं थी, उसका हमारे जिस्म को नुकसान था। हमने अपने आप को नुकसान पहुंचाया 1,500 रुपया लगा के। दूसरा उसूल रिसालत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में खाने पीने का क्या मामूल था, ये तो आप पूछें ही ना, वरना कितने लोग हम में से सुन के बेहोश हो जाएंगे। तकरीबन हर अगले दिन रोज़ा होता था। इसलिए नहीं कि रोज़ा होता था, इसलिए कि खाने को कुछ नहीं होता था, लेकिन चलें, वो रसूल थे, बहुत बड़ी बात है, अब क्या करें, वो ज़माने थे, हम तो ये कहते हैं ना। अगला उसूल है इन्फाक फी सबीलिल्लाह। आपको पता है 1,500 रुपए में 4 अफराद के एक कुनबे का राशन आ जाता है, 1 महीने का। रमजान में देते हैं हम ना रमजान पैकेज, 1 महीने का राशन होता है, जिसको 4 से 5 बंदे 1 महीना खाते हैं। और ये 1,500 रुपया हमने उस आइसक्रीम पे फूंक दिया जिसमें न जाने क्या क्या इन्वॉल्व था। मेरी बात बहुत लोगों को बुरी लगेगी, मुझे पता है, मुझे खुद भी ये बातें सुन के बहुत बुरा लगता था, लेकिन बात सिराते मुस्तकीम की हो रही है। ये आसान रास्ता नहीं है। हमने इन्फाक फी सबीलिल्लाह के उसूल को सुन के, जान के, समझ के, सब कुछ करके क्या पसे पुश्त नहीं डाल दिया और अपने नफ्स की ख्वाहिश का इत्तबा किया? दिल चाह रहा है, दिल की शिरियाने बंद हो रही हैं, लेकिन दिल चाह रहा है। कुरान में ही है, उससे बड़ा गुमराह कौन है जिसने अपने नफ्स की ख्वाहिश को अपना इलाह बना लिया, अपना माबूद बना लिया। बहुत आसान है इन बातों को समझना अगर हम अपने ऊपर इनको मुंतबिक करना शुरू कर दें, अगर हम इधर उधर बनी इसराइल को और नसरानियों को और काफरों को और हिंदुओं को और अपने पड़ोसियों को और रिश्तेदारों को देखना छोड़ दें, हम सिर्फ अपने गरेबान में देखें, तो हमें पता चलेगा कि सिराते मुस्तकीम कितनी और किस हद तक हमारी तरजीह है और हम कितना दूर इससे, कितनी आसानी से भटक जाते हैं। क्योंकि फाइनल उसूल अल्लाह की हिदायत का जहाद फी सबीलिल्लाह है, और यही जहाद है, नफ्स से ही जहाद करना है ना। जहाद कबीर किसको कहा गया है? अपने नफ्स से। हर उस चीज से हिजरत इख्तियार कर ले जो तेरे रब को नापसंद है, यही जहाद कबीर है। उम्मीद है कि मैं जब आज नमाज में एहदिना सिरात अल मुस्तकीम कहूंगी तो मुझे ये याद होगा। उम्मीद है और दुआ है कि शायद मुझे ये याद हो जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। बहुत प्यार और दुआ के साथ सब के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हम सबको कुरान समझ के उस पर अमल करने वाला और उसको आगे पहुंचाने वाला बना दे। आमीन सुम आमीन।